जब अल्लाह के रास्तों में एक इंसान निकलता है तो उसके साथ मामला क्या होता है, आयत 100 पे चले, व मैं यो हाजिर फी सबील अल्लाह, और जो कोई हिजरत करेगा अल्लाह की राह में, हर चीज से हिजरत जिसको अल्लाह ने पसंद नहीं किया, क्या होगा, यजिद फिल अर्दी मुरागमन कसीरा वसा, वो पाएगा जमीन में बड़े ठिकाने और बड़ी वसत। लोग हिजरत से क्यों डरते हैं, ये कायदून बनना क्यों पसंद करते हैं मुजाहिदून बनने की निस्बत, क्योंकि इंसान बहुत इजी फील कर रहा होता है, इजी गोइंग, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, सब ठीक है, खानदान वाले खुश, आज आप मेरे घर चाय पिए, कल मैं आपके घर पीऊंगी, सुबह आप इधर शाम उधर, इस वीकेंड पे उधर चलते हैं, बच्चों को घुमाने चलते हैं, इस वीकेंड पे इधर जाते हैं, बड़ी मजे की जिंदगी होती है। अब बीच में आप एकदम ये दीन के काम ले आते हैं, लोग कहेंगे इनको क्या हो गया, ये कोई जिंदगी है, फोन करो तो मिलती कोई नहीं, घर जाओ तो घर में कोई नहीं होती। अब होता क्या है कि जिन लोगों के साथ हमने मोहब्बत की इतनी पींगे बढ़ाई होती हैं, वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं हमारे मुजाहिद बनने में, वो कहते हैं ये मेरे हाथों से गई। अब देखिए कि मानिए कि ना मानिए, लेकिन इंसानी नफसियात का तकाजा है कि जो काम वो खुद नहीं कर रहा होता वो दूसरे को करता देख नहीं सकता, ये माने ना माने, आप 10 दफा भी कुरान पढ़ जाएंगी ना, लेकिन आप इंसानी तबीयत के इस पहलू से अपनी जान नहीं छुड़ा सकती। आप खुद वो काम कर रही हैं तो आप खुश हैं, मेरे पास भी और के पास है, आप खुद नहीं करेंगी ना तो आप दूसरे को देख के खुश नहीं होंगी, आप कहते हैं ठीक है इनकी मर्जी है ना करें तो ना करें, लेकिन वो एक गोल बना के अंदर बैठे होते हैं कि किसी तरह इनको पीछे करना है, आपके अंदर उनको कोई होल नहीं मिला, क्योंकि माशाल्लाह आपके दिल जम गए, किसी को जन्नत दिखे तो क्या वो दुनिया की चीजों के पीछे मरेगा। अब क्या होता है कि वो लोग अंदर से गिल्ट करते हैं, अमूमन आप देखिए कैसे लोग फिर नेगेटिव बातें करते हैं, ये कुरान पढ़ने वाले बड़े रिजिड हो जाते हैं, अभी हुकूक ले बात भी तुम्हें पता है कि नहीं पता, सुनते हो आप ऐसी बातें, हाँ जी आप तो कभी मिलती ही नहीं, और ये है और वो है, दिस एंड दैट, और वो कहते हैं ना तानों के तीर, फिर आप कहते हैं अच्छा अल्लाह को तो मेरा पता है, हाँ जी मेरा तो हाल ही नहीं पूछा। मिसाल है कोई भी ऐसा हो सकता है कि जिसके रिश्तेदार शहर में इधर रहते हो और वाकई आप बहुत जाती आती हो, और यकीन करें बास दफा यहाँ की नहीं पाकिस्तान की बात कर लें कि साल बाद भी हम जाते हैं ना जब कभी भी अमूमन, तो हमारे रिश्तेदार दूसरे के घर में कोई नहीं गए होते, मैं खुद जब जाती हूँ मेरी आदत है 10 मिनट 5 मिनट जिस जिसको मैं मिल के आ सकूँ मैं मिलती हूँ, और जो मुझे जाहिर है मेरे भाई बहन ही लेके जाते हैं तो कहते हैं लास्ट टाइम भी तुम्हारे साथ ही गए थे, तो मैं फिर उनसे गुस्सा करती हूँ कि ये कैसे आप लोग हैं, आमतौर पे अब किसी को ना मिले हु केयर्स, आप जरा मुजाहिद फी सबीलिल्लाह बने तो सही, फिर आपको ताना मिलेगा, हमें तो तुम पूछती नहीं। मिसाल है अगर किसी की सास माँ बहन ही कोई जरा बड़े उम्र का ही बंदा हो, वैसे भी कोई नहीं बख में पूछती हर वक्त, लेकिन वो जरा मुजाहिदा बनेगी तो कहेंगी हाँ जी लोगों को पढ़ने पढ़ाने जाते हैं तो अपना तो फिक्र ही कोई नहीं। अब ये ताने क्या है, ये वो गिल्ड है, अब उन्होंने अपने अंदर एक गोल बनाया हुआ किसी तरह इसको मुजाहिदा से कायदा बनाना है, ये जो कायदा ग्रुप है वो भी यही कायदा ही है, जड़ों में बैठे हुए लोग ताने देते हैं, लोगों ने मजाक बना लिया। अब होता क्या है, वो अपने दिल में एक चीज सोच लेते हैं, शर्त ये कि आप इस मुजाहिदून फी सबीलिल्लाह के काफिले में शामिल रहें तो आपको दिन ब दिन अपने मकसद से प्यार होता जाएगा और आपको लगेगा कि मैंने वो दौलत पा ली है जो इनके पास नहीं थी, बल्कि आप रोएंगे उनके लिए कि ये क्यों घर बैठी रहती हैं, ये जो आ जाए, एक खामोश रस्साकशी चलती रहती है इस रस्ते में, शुरू में चलती रहती है। अब होता पता क्या कि वो कायदात जो होती है ना वो कोई ऐसा मौका पा लेंगी आपकी दोस्तों में आपके लोगों में कि जो किसी वक्त भी आपको कमजोर देखे, आप कह के तो देखें टेस्ट बड़े लेते हैं, फिर देखिए वो आपके जख्मों पे जो फाहे रखेंगे, हम तो पहले ही कहते थे हाथों में दर्द है लिखा ही नहीं जाता, कहते हैं लिखो, सर में माइग्रेन बड़ा है, पढ़ पढ़ के नजर कमजोर हो गई, सर में दर्द होगी, मोटे हो गए, यानी हर रोग जिस्म को लग गया इस पढ़ने पढ़ाने से, आधे मुंह से आप अपना दुख बताएं क्लास का वो आपको सीने से लगाएंगे, मैं तो पहले ही कहती थी, यकीन करें वो कहते हैं ना कि वद्दु लौ तुदखिनु फयुदखिनुन, वो तो चाहते हैं तुम जरा से सुस्त हो हम तुम्हें पूरा ही सुस्त कर ले। अब आप देखिए कि टसल क्या है, आप जब इस ग्रोह में शामिल हैं तो आपका दिल है वो आपके साथ आए, है ना आप सबकी भी ये तलब, जब आपने आज घर छोड़ के कुछ घंटों के लिए अल्लाह के लिए ये जान माल लगाई है तो आपकी यहाँ तड़प है इस वक्त भी कि आपके वो साथी हों जो इस वक्त भी बेचारे घरों में बैठे हैं, कुछ भी चाय पानी कर रहे होंगे या कुछ काम भी कर रहे होंगे, तो वो काम तो बाद में भी होंगे, दिल चाहता है ना, लेकिन जिस दिन आप इस काफिले से निकल गईं, मिसाल है कि आप किसी मजबूरी की वजह से कुछ दिन पीछे हो गईं, कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिंदगी में, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं प्रॉब्लम्स, अब उस वक्त वो आपकी वो जो दोस्त है ना, अब वो अंदर से हंसेगी, अब देखती हूँ कितनी पक्की है। अब इस वक्त असल में अगर आप ढीली हुई ना, तो आपने उनको मौका दे दिया जीतने का। अच्छा, आप उस वक्त क्या काम कर रही होंगी, बाहर के चलो अब ये मुझसे खुश हैं, अंदर से अकेले में वो बगलों से हंसते होंगे, देखा आ गई है ना वापस, हमें पहले ही पता था ये 4 दिन का बुखार है, ये हमें पहले ही पता था। और बंदे को पता भी नहीं चलता वो किस तरह रोड बदल देता है, सीधे जाते जाते देखिए कोई टर्न एकदम नहीं होता, स्पीड स्लो होती है, फिर ऐसा 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 ऐसे हर रोड दूसरी से मुख्तलिफ हो जाती है। ये तो वही बंदा जमेगा 30वें पारे तक, बल्कि उसके आगे तक, जिसकी ज़िंदगी में ये मिशन शामिल हो गया। तो अल्लाह से ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इस रास्ते में ज़ाया ना करे। फिर आप देखिए यहाँ एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता कि जान और माल दोनों लगाने पड़ते हैं। बस अब हम क्या सोचते हैं कि नमाज रोज़ा तो कर लिया, दैट्स इट, इस्लाम को हमारी नमाजों से वो फ़ायदा नहीं होगा, हमारे रोज़ों से वो फ़ायदा नहीं होगा जो हमारी कोशिशों से होगा। नमाज रोज़ा ये तो सब चीज़ें हमारी ट्रेनिंग थी कि हम मुजाहिद फी सबीलिल्लाह बने, बल्कि आप कह लें कि इस्लाम हमें असल में मुजाहिद बनाने के लिए नमाजें पढ़वाता है, रोज़े रखवाता है, ट्रेनिंग्स देता है। ये ट्रेनिंग के दिन में 5 बार फ्यूल डालता है कि तुम ये काम करने के काबिल हो जाओ, और अगर हम वही करके कहें कि बहुत हो गया अब इसके बाद हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, तो फिर आप समझ लीजिए कि हम उस पर अपना हक अदा नहीं कर पा रहे। अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि हम इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाएं। अब अल्लाह के रास्ते में निकलें तो मिलता क्या है, आयत 100 को देखिएगा, वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाह, और जो कोई अल्लाह के रास्ते में हिजरत करेगा, यजिद फिल अर्दि मुरागमन कसीरन वसअ, वो पाएगा ज़मीन में बड़े ठिकाने और बड़ी वसअतें। सूरत अलनकबूत में भी आता है कि या इबादी अल्लज़ीना आमनू इन अर्दी वासियतुन फैया फाबुदून, 56 आयत है सूरत अनकबूत की, ए मेरे वो बंदो जो ईमान लाए हो, मेरी ज़मीन बहुत कुशादा है, बस तुम मेरी ही बंदगी करो। हालात तंग हो जाते हैं, बात दफा नहीं बात बनती, तो कहा क्या करो, फिर निकलो अल्लाह के रास्ते में। घर का माहौल कुफर वाला है, शिर्क वाला है, बिदत वाला है, जिना की आदत है घर वालों को, कबायर हैं, कोई सुधरने की उम्मीद नहीं, तो फिर निकलो अल्लाह की आस पे, निकलोगे अल्लाह तुम्हें देगा। यहाँ लफ्ज़ देखिए मुरागमन कसीरा, रगीमा अनफुहू, अगर आप हदीस पढ़ें कभी अरबी में, तो ये बहुत मारूफ एक अरबियों का मुहावरा था उस दौर में कि उसकी नाक खाक आलूदो, नाक खाक आलूदो, यानी जैसे हमारे यहाँ बड़े प्यार से कहते हैं ना कि उसका बेड़ा तर जाए, अब ये कोई गाली नहीं होती, दुआ ही होती है। इसी तरह अरब लोग जो होते थे वो एक दूसरे को इस तरह से बातें करते थे कि उसकी नाक खाक आलूदो, यानी मीन के थोड़ा सा उसको एक किस्म की आर दिलाई जाती थी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ हिजरत के नतीजे में ये बता दिया कि तुम्हारा दिल तो डरता है, तुम्हें अपना माहौल, अपनी पसंद की महफिलें, पसंद के दोस्त साथी छोड़ने तो पड़ेंगे, कुछ दिन तो ये तन्हाई आएगी, लेकिन एक वक्त आएगा कि अल्लाह तुम्हें वो सब कुछ वापस लौटा देगा। हिजरत और तन्हाई साथ साथ होती है। जो बंदा अल्लाह के लिए कुछ छोड़ता है ना, तो शुरू में वाकई वो तन्हा हो जाता है, उसके अपने उसको छोड़ने लगते हैं, उसकी दोस्तें उससे बेजार हैं। वाकई ये सबसे बड़ी कुर्बानी है जो बंदा देना नहीं चाहता, और वो कह के वो लोगों का पसंदीदा था। देखिए ना, आपकी स्माइल देख देख के, तारीफें करके लोग चाय पानी पीने आ गए, आपके हाथ का केक खा गए, आप खुश हैं कि मेरी तारीफें करें, वो तो केक खा रहे थे। अब जब आप थोड़ी सी पाबंदियों में आ गई, तो आप क्या करेंगी, वो नहीं कर पाएंगी। नुकसान क्या होगा कि उसके बाद फिर वो आपसे दूर होंगे। मैंने अपनी आंखों से घरों के माहौल बदलते देखे हैं, वो घर जहां से कभी चूल्हा बंद ही नहीं हुआ था, ऐसी फैमिली ज्वाइंट फैमिलीज हैं मैं जानती हूँ, बिल्कुल हमारे अपने घरों में, कि एक आई पार्टी तो दूसरी गई, पूरा पूरा दिन होटलों की तरह उनके किचन में खाने पकते थे, अब एक देवर आ गया, ये भाभी और बड़ी फैमिली। आहिस्ता आहिस्ता जब अल्लाह सुबहाना ताला ने उनके लिए ये पाबंदियाँ आसान कर दी, औरतें अलग हो गईं, मर्द अपने, यानी आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने चेंज दी, कोई इतना बिग टर्न भी नहीं आया, सिर्फ घर की औरतों ने बड़ी बड़ी चादरें लेनी शुरू कर दी, देवर आ गया तो उसको कहा अच्छा अस्सलाम वालेकुम, नौकर तो अच्छा बिठाए अभी आते हैं बैठे, पर्दों में बात करके बीच में बैठना भी शुरू कर दिया। हल्की हल्की जैसे यूं चेंज आती है ना, पहले तो भाग रहे थे ना, कोई पता ही नहीं, आधी रात को भी यकीन करें मैंने 12 बजे भी देखा है सलाम वालेकुम घर में, आ रहे हैं हम सारे आज रात उधर सोएंगे, गाड़ी में बच्चे भरे सब उधर, बाकी अच्छा तुम आ रहे हो मैं भी आ रही हूँ, चार पांच भाइयों की औलाद सारे रात वो जिसके घर में है वहां वाकई एक कोहराम मचा हुआ है, सुबह नाश्ते बन रहे हैं खा रहे हैं ऐसे हल्ले गुल्ले। जब ये चेंजेस आई आहिस्ता आहिस्ता फिर चैनलाइज हो गए, फिर क्या हुआ पता चला कि अब तो कोई आया भी था शहर में तो हमारे घर तो आया ही नहीं, चला गया। वजह क्या कि वो जी वहां जाए तो वो फिक्र पड़ जाती उनको पर्दों की, अब जी पता नहीं जी भाई घर में है कि नहीं जो भाभी ने मौका देना है। अब आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या होता है कि इंसान अपने लिए थोड़ी सी तन्हाई महसूस करता है। अल्लाह ताला ने यहाँ ये बताया कि शुरू में ये तन्हाई होगी, कर लोगे बाद में देखना तुम्हें फायदा होगा। मैंने मोहम्मद असद का नाम आपको एक दफा पहले भी लिया था, ये 19वीं सेंचुरी के शुरू में यहूदियत से मुस्लिम हुए थे, यानी ये वो शख्स हैं कि जिनको अल्लाह ने इस्लाम दिया तो इनके बाप जो कट्टर यहूदी थे उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा और बात नहीं करूंगा, उन्होंने मरते दम तक निभाया, कहते हैं कि मेरे बाप ने मरने तक मेरे से बात नहीं की। वो इस आयत की तफसीर में क्या कुछ लिखते हैं, उनकी एक बड़ी बुक भी है कि जिसमें उन्होंने कहा कि तुम आम जैसे हम मुसलमान है ना हम इस्लाम पे अमल करें हम तो इस आयत को सुन ही नहीं सकते, जो वो कहते हैं कि हिजरत और तन्हाई, डस्टी एंड लोनली रोड, कि जब कोई इस्लाम अपनाता है कुफर छोड़ के तो इंसान तन्हा हो जाता है, दिल हार्ट ब्रेकिंग लोनलीनेस तन्हाई, बल्कि जो रागीमा मट्टी है ना मट्टी को कहते हैं ना, भी आपको बताया है, तो वो कहते हैं मुरागमन कसीरा कह के एक दफा तो बंदा जब अल्लाह का बनता है ना तो वो मट्टी में मिल जाता है ह्यूमिलिएटेड, वो तन्हाई की रातें कोई आपको मिलता नहीं, खौफ ज़दा लोग आपको देख के हैरान है, स्ट्रेंजर अजनबी इनको क्या हुआ ये क्या हो गया वो हो गया, कहते ऐसे लगा था मुझे भी कि सब मेरा साथ छोड़ गए, लेकिन ज्यादा अरसा ये तन्हाई नहीं रहती, कुछ तो वापस आ जाते हैं, वही साथी वापस आ जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि आपको इतने हॉरेबल नहीं है जितने लोगों का ख्याल था, और कुछ नए साथी मिल जाते हैं, नेकियों के मौके मिलते हैं, ईमान आता है तो इंसान को ईमान वाले साथी भी मिल जाते हैं, इसलिए शुरू में ये मुश्किल सहले क्योंकि आप मुजाहिदीन में शामिल हो रहे हैं, और जिहाद ये नहीं होता कि आप तलवार उठाएं, ये भी बेहतरीन जिहाद है कि आप अल्लाह का बनना चाहते हैं, देखिए ये छोटी हिजरत है कि अल्लाह की नापसंद चीज को छोड़ दें, इसमें एक छोटी सी बात है जिसको टच करना इसलिए जरूरी है कि हम सब वेस्ट में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में मैं होती तो हो सकता है मैं उसके ऊपर बात ना भी करती तो खैर थी, लेकिन क्या फिर हम गैर मुल्कों में और खास तौर पर नॉन मुस्लिम मुल्कों में रहते हुए फिर हिजरत कर लें, ये क्या होगा, मैं ये बड़ा मारूफ जुमला है ना आपने भी सुना होगा इधर कि नॉर्वे में तो हर दूसरे बंदे की जुबान पे यही है कि फिर क्या करें हम अपने बच्चों को कहाँ ले जाएं, तो थोड़ी सी इस पे आपकी मदद कर देती हूँ, पिछले साल हमने इस पे बहुत डिटेल से बात की थी, लेकिन आप समझ लीजिएगा कि एक वो दौर होता है जो नबी सल्लम का दौर था, एक आइडियल इस्लामी रियासत, और दुनिया में फिर कुफर है 100% आपको फौरन वहां से उठ के आ जाना चाहिए, और जब मक्का से मदीना हिजरत हुई थी तो हिजरत फर्ज़े ऐन थी हर एक को करनी थी, ये अलग बात है कि इस्तिस्नाई सूरतें मौजूद थी। आज क्या हो रहा है, अगर आप पूरी दुनिया को देखें ना ग्लोबली तो पूरी दुनिया में इस वक्त एक भी इस्लामिक मुल्क नहीं है, पार्शली मुस्लिम्स हैं, कुछ मुल्कों में इस्लाम का कानून नाफिज भी है किसी हद तक, मसलन सऊदी अरब है अल्हम्दुलिल्लाह वहां बहुत ज्यादा हद तक दूसरी मुल्कों की निस्बत, लेकिन इसके अलावा तकरीबन 114 या 120 इस्लामी जो मुल्क हैं क्या वो सारे इस्लामिक मुल्क हैं, सूद वहां रिश्वत वहां, एक तो ना कि लोग अमल नहीं कर रहे और एक हकूमती सतह पे वहां इस्लाम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि जो आज के मुस्लिम मुल्क है ना ये इस्लाम फ्रेंडली मुल्क है, ये जो नॉन मुस्लिम मुल्क जिसको हम वेस्टर्न कंट्रीज कहते हैं ये इस्लाम फ्रेंडली नहीं है, कोई तो बहुत न्यूट्रल रहेंगे कोई कुछ भी है, तो आप अगर किसी दूसरी जगह जाते हैं ग्लोबली आज पूरी दुनिया एक विलेज बन चुकी है, इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है इतना ज्यादा असर है कि आप अगर पाकिस्तान के किसी गांव में भी बैठे हुए तो वहां भी आप इंग्लिश मूवी देख सकते हैं, और अगर आप वहां रहकर भी अपने बच्चों पर नजर नहीं रखेंगे तो वो खराब हो सकता है, ठीक है बस लोग सऊदी अरब मूव हो जाएंगे और वहां जाके जो वहां लग्जरीज उनको मिलेंगी वो उसमें भी खराब हो सकते हैं, ठीक है अब इस सूरत में मैं और आप किसी पे कोई फतवा नहीं दे सकते कि अगर कोई आज के मुल्क में गैर मुस्लिम मुल्कों में रह रहा है तो वो हराम कर रहा है, गलत कर रहा है। मैं कहती हूँ ये फतवे का तो मसला ही नहीं है, ये तो आप खुद देख लें आपको क्या चाहिए। कैसे, इसको थोड़ा समझ लें। सबसे पहली हिजरत जो हम मुसलमानों को आज के दौर में करनी है ना, वो गुनाहों से हिजरत है। अगर आप किसी वेस्टर्न कंट्री में रह के गुनाहों से हिजरत किए हुए हैं ना, तो उसके बाद इंशाल्लाह आपको किसी और हिजरत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर गुनाहों से हिजरत नहीं, तो मक्का मदीना भी आपको नहीं बचा सकेगा। दूसरी बात, आप देखिए, आप सारे जा सकते हैं। आज मैं कह सकती हूँ पूरे यकीन से कि अमेरिका का वीज़ा आसान है, सऊदी अरब का वीज़ा मुश्किल है। सिर्फ आपको विजिट वीज़ा मिल जाए, उम्रे का वीज़ा, हज का मिल जाए, तो भी बड़ी बात है, वहाँ रेजिडेंसी का तो आपको मिल ही नहीं सकता। फिर अगली बात देखिए कि सारे मुसलमान जो इस वक्त वेस्ट में है, वो सारे निकल के जाएंगे तो मुस्लिम मुल्कों में इतने पनप सकते हैं। फिर थोड़ा सा हिस्ट्री को देखें, इंशाल्लाह एक ऐसा टॉपिक जहन में है अगर ज़िंदगी रही तो करेंगे, कि ये जो आज 2014 शुरू हो गया ना, 1914 से लेकर 2014 की ये यूरोप की हिस्ट्री किसी दर्स में सामने रखनी है। आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे मुसलमान दूसरों के हाथ में कठपुतली बने, और ये जितने ये छोटे छोटे मुल्क आज हमें इर्द गिर्द दिख रहे हैं ना इस्लाम के नाम पे, ये कहाँ से बने? और ये यूरोप जो आज दिमागों पे सवार है, आज से 100 साल पहले ये क्या था? कुछ भी नहीं था। ये अमेरिका जिसके नाम पे आज हम, यानी कितनी मतलब इज्जत से बात करते हैं, कुछ भी नहीं था इनके पास। ये सिर्फ हम मुस्लिम्स ने छोड़ा तो दूसरों को मिल गया। तो लिहाजा आज जो करना है ना, शऊर के साथ जीना। और अल्लाह ताला का वादा है कि जहां भी मुसलमान जाएगा वहां इस्लाम फैलेगा। आप सहाबा के बाद से आज तक की मुस्लिम हिस्ट्री खोल लीजिए, जितने लोग मुसलमान हुए हैं ना मुल्क मुल्की सतह पे, वहां मुसलमान गया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक कैंसर का बीज जाता है तो वहां गंदगी फैल जाती है ना, इसी तरह एक खुशबू गई तो वहां खुशबू फैल गई। अगर मुसलमान सारे नॉन मुस्लिम मुल्कों को छोड़ दें तो खुली छुट्टी मिल गई ना नॉन मुस्लिम्स को। असल जो जरूरत है इस वक्त वो यह है कि मुसलमान मुसलमान बने। आप मुस्लिम बन के जिए तो ये मुल्क आपके हैं। क्यों? कि इस्लाम की एक खुशबू, एक पुदीने की गट्ठी कहीं रख दें तो उसकी खुशबू दूसरों को आती है, एक सच्चे मोमिन की तो बहुत सारी आती है। हमारा हाल यह कि जब हम इन मुल्कों में रहते हैं ना, तो हम उनके असर में आके रहते हैं। अगली बात ये नोट कर लें कि अगर हमें किसी भी वेस्टर्न कंट्री में रहना है, तो हमें वहां अपना इस्लाम दिखा के रहना है, मरूबियत के साथ, दुखी भी नहीं। हमारा हाल क्या है कि आज हम में से किसी को वीजा मिल जाए, ग्रीन कार्ड मिल जाए, समझ में आता है कि जैसे वो जन्नत में चला गया, और जो पीछे वाले हैं वो उनको जो खुशकिस्मत समझ रहे हैं, और बाहर वाले जाके अपने मुल्क वालों को बुरा कह रहे होते हैं। आज भी आप देखिए, ये गलती तो आप कभी भी ना करें। आप यहां बैठे हैं ना, कभी अपने बच्चों से पाकिस्तान की बुराई ना करें। अखबारें पढ़ के, तबसरे सुन के, कार्टून पढ़ के और सियासतदानों के बयानात पढ़ के, कभी निजी महफिलों में भी बैठ के बच्चों के सामने बुराई ना करें पाकिस्तान की, वरना आज से 10-20 साल बाद कभी आप जाना भी चाहेंगे ना, तब अकेले जाएंगे। हम उनके सामने बुराइयां करते हैं, बाद में वो जाते ही नहीं। आज भी आप देखिए, ऐसी मुस्लिम फैमिली अमेरिका में तो एक बहुत ट्रेंड है, नॉर्वे में एक खास हद तक है, लेकिन अमेरिका में तो बहुत ज्यादा है कि जिनके बच्चे जरा से बड़े होते हैं वो उनको ले जाते हैं पाकिस्तान, साल 6 महीने नहीं रहते वापस। जी वहां मक्खियां बड़ी हैं, वहां जी गटर बड़े हैं, तो वो तो होंगी। देखिए आप क्या सोचते हैं कि आपके लिए सब कुछ वहां तैयार है? आपने कुर्बानियां देने के लिए जाना है। जब आपको एक बात है कि आप कहते हैं कि भाई ठीक है, इस तरह की बात है, मुझे अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी है, मैं चली जाऊँ, चले जाइए। जो जा सकते हैं वो 100 दफा जाए। ये मत सोचिए कि जी, बाज लोग कहते हैं नहीं जी पाकिस्तान में तो और मुश्किल है अपने बच्चों को ठीक रखना, झूठ कहते हैं, गलत कहते हैं। वहां इस हद तक खुलेआम बुराई नहीं है कि आपकी नजरें भी ना पाक हों और आप गलत चीज देखें और मजबूर कर दिए जाए। ये आपकी अपनी मर्जी है कि अब आप किस तरह से बात करते हैं अपने बच्चों के साथ, लेकिन आप देखिए कि अब आप हर जगह ये ना सोचे कि आप लंदन में बैठे हुए हैं, हर गली के कोने पे मस्जिद है, हर वीकेंड पे आपको यहाँ प्रोग्राम्स मिलते हैं। आज भी अमेरिका में ऐसी ऐसी रियासतें हैं कि जहाँ मुसलमान जब जाते हैं तो 60-60 मील दूर जाके जुमे की नमाज पढ़नी पड़ती है ही कोई नहीं मस्जिद। मैं ऐसी बेशुमार फैमिलीज को जानती हूँ कि जिनके बच्चे 10-15 साल के भी हो गए, बच्चों ने आज तक कुरान ही नहीं पढ़ा। अब तो ये नेट की कोई सहूलतें हो गई तो घर बैठ के कोई स्काइप पे पढ़ने लग गए। इवन आज से 5 साल पहले भी अमेरिका में हमारे अपने मिलने वाले, वो कहते पढ़े नहीं क्योंकि बच्चे खुद से पढ़ते कोई नहीं माओ से, और मस्जिद बड़ी दूर है, और कितनी दूर कोई माँ जाएगी लेके जाएगी। अब आप बताइए कि अगर आप पाकिस्तान जाते हैं, 5 वक्त की अजान तो कानों में पड़ती है, आपको अल्लाह ताला ने एक खास तौर पे माहौल तो दिया, बाकी रह के गटर बहते हैं वहां के, तो यहाँ गंदगी के गटर नहीं फैलते। और जिस तरह से आउट स्पोकन बच्चे यहाँ बन जाते हैं, अभी भी पाकिस्तान वाले इतना बर्दाश्त नहीं करते, थप्पड़ तो मार सकते हैं ना, यहाँ तो आप थप्पड़ नहीं मार सकते। हाँ, एयरपोर्ट पे जाके मारेंगे जब पाकिस्तान उतरेंगे। यकीन करें, ऐसा वाक्या हुआ था, किसी ने बताया कि बच्चे ने खूब सताया बाप को, और बच्चे को पता था कि मुझे मार कोई नहीं पड़ी। बाप ने टिकट कटाई पाकिस्तान की बेटे के साथ, एयरपोर्ट पे जाके जूता उतारा, कहता आप बुला किस पुलिस को बुलाता है। ये सच्चा वाक्य है क्या? आप बुला जिसको बुलाता है, यानी वो माँ से ज्यादा आपके सगे बनते हैं, आपका बच्चा प्यार वो आपसे बच्चे से करते हैं। और ये तो आम कहानी है, इसको तो ना ही छेड़े तो बेहतर है। असल बात पता क्या कि आपके अंदर रेजिस्टेंस कितनी है। मैं इसको रात को सोच रही थी कि मैं इस मौजू पे थोड़ी सी बात अगर करूं तो क्या करूं, तो मैंने इसको ये सोचा कि ये फैसला आपका अपना है। मैंने ऐसे ऐसे भी माँ बाप, माशाल्लाह आपने पिछले 10-15 साल में वेस्ट के सारे मुल्कों में रहते हुए देखे हैं कि इतने बाशोर माँ बाप है कि पाकिस्तान में भी नहीं होंगे इतने। उनके बच्चों की तमीज़, तहजीब, उनका खाना पीना, बोलना उठना, 5 वक्त की नमाजें, और उनके जो इस्लाम से मोहब्बत है वो हमारे मुल्क से बहुत ज़्यादा है, प्योर है। बल्कि हमारे मुल्क में तो इस्लाम किसी को तो फिर पूछना पड़ता है कौन सा इस्लाम है, समटाइम कहीं तासुब वाला और कहीं तंग जहनी वाला। यहाँ के जो बच्चे होते हैं वो बड़े बोल्ड किस्म के मुस्लिम होते हैं। तो ये चीज़ नहीं है कि हम ना करें। बाहर आप रहते हैं, एक वजह, यानी अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस चीज़ को बहुत ही खुशी से हमेशा कहती हूँ कि वेस्ट में या नॉन मुस्लिम मुल्कों में रहने के बारे में इस वक्त जो हमारी उम्मत का है, दो एक्सट्रीम्स हैं। एक कहते हैं कुछ नहीं होता रहो, यानी जैसे आजकल सारी दुनिया में मोस्टली लोग रह रहे हैं वैसे रहो, और दूसरे कहते हैं बिल्कुल हराम है। बात दोनों की गलत है। वल्ला ही जैसे इस वक्त मेजोरिटी मुस्लिम्स की रह रही है जिस तरह, वैसे तो नहीं रहना चाहिए, ये तो मानने की बात है। और जो वो कहते हैं बिल्कुल हराम है, ये भी जायज़ नहीं। एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी बुनियाद पे आप वाकई ठहर सकते हैं, और वो क्या है? अल्लाह के कलमे को बुलंद करना, तबलीग और दावा। आप कहते हैं डॉलर बड़ा है पाकिस्तानी रुपी से, इसलिए रहना है, चले जाइए, रिस्क डॉलर में नहीं आता। पाकिस्तान में अल्लाह आपको थोड़े में भी बरकत दे देगा अगर आपका लगता है कि वहां दीन ज्यादा महफूज है। पैसा कमाने के लिए कभी इधर ना रहे, लग्जरियस लाइफ के लिए कभी इधर ना रहे। यहाँ बिजली नहीं जाती, वहां बिजली जाती है, इस बात पे कभी ना रुके, जाइए, आप देखिए वो आपसे भी ज्यादा खुश हैं, यकीन करें। सिर्फ एक चीज ऐसी है कि जो आपको करने के लिए इधर रहना ही पड़ेगा, और वो तबलीग है, कि हम खुद अमल से, कॉल से, बात से, इस तरह इस्लाम से ये लोगों को फायदा दें। बहुत अच्छे ब्रदर हैं, तो उन्होंने कहा कि हदीस में आता है कि कुर्बे कियामत सूरज मगरिब से निकलेगा ना, मशरिक की बजाय, तो कहते हैं कि इस्लाम का सूरज भी वेस्ट से ही निकलना है, जिस तेजी से इस्लाम फैल रहा है इधर। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि जो हम फैसले करें उसको बेहतरीन तरीके से करें, लेकिन यह कि इन सारी चीजों को हम अपने लिए हुज्जत नहीं बना सकते, अपने लिए खुद फैसला करें। अगर चॉइस हो तो मेरा ख्याल है कि मुस्लिम मुल्कों में रहने में कोई कबाहत नहीं है। अगर आप यहाँ रह के कुछ नहीं कर रहे और आपको ऐसे ही करने हैं काम के, जिसको देकर दूसरे कहें कि भाई अच्छा जी इनमें और हम में फर्क है, तो फिर तो वाकई घर के अंदर छुप के अपने मुल्कों में करें तो कुछ कम बात होगी। अदरवाइज आप देखिए कि इस पे कोई शख्स आपको फतवा नहीं दे सकता, ना मुझे दे सकता है। अल्लाह ताला ने इसी बात को बता के अब कह दिया कि आवाज़ ही आयत के ऊपर कि जब तुम अल्लाह के रास्ते में निकलते हो, कुछ देर तुम्हें मुश्किल आती हैं, लेकिन अल्लाह ताला तुम्हारे लिए उसमें खैर के मामले कर देते हैं, तुम मुरागमन कसीरा पा लेते हो। अब ये रास्ता इतना खूबसूरत है कि वमई यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन, और जो कोई अपने घर से निकलता है मुहाजिर बनते हुए, छोड़ते हुए, इलल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, सुम्मा युद्रिकुल मौत, फिर उसको मौत आ जाती है, रस्ते में मौत आ गई, अभी अमल किया कोई नहीं, अभी कोशिशों में थे, अभी तैयारियों में थे, मौत आ गई, कोई बात नहीं, फकद वका अजरुहु अलल्लाह, तो इसका अजर तो अल्लाह के जिम्मे वाकई हो गया। ये हैं वो कोशिशें जिसकी अल्लाह कदर करता है, यानी अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे तो जरूरी नहीं कि पहुंच जाए तो अजर शुरू होगा। देखिए आप इम्तिहान देने आते हैं तो इम्तिहान दे देते हैं, पर्चा हैंड ओवर करते हैं, फिर ही उम्मीद रखेंगे ना मार्क्स की। आप घर से निकले, खुदा ना खास्ता रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए या ट्रैफिक में फंस जाए और पेपर ना दे सकें, तो नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे ना। अल्लाह के रास्ते में निकलते ही अजर शुरू हो जाता है, क्योंकि हदीस में आता है कि इन्नमल आमाल बिन्नियात, आमाल की बुनियाद नियतों पर है, जिसकी हिजरत जिस नियत से थी उसको उसका वही अजर मिलेगा। फमन कानत हिजरतु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतु इलल्लाहि व रसूलिही वमन कानत हिजरतु लिदुनिया युसीबुहा, जिसकी हिजरत दुनिया के लिए थी मिल जाएगी उसको, अविमरातिन यनकहुहा फहिजरतु इला मा हाजर इलैहि, और जिसने किसी औरत से निकाह करने के लिए हिजरत की तो उसकी हिजरत उसके लिए होगी। तो किसी और वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हिजरतें करनी है कि हमने अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते में निकलना है, तो इंशाल्लाह अजर है। वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा, अल्लाह सुब्हान तआला बख्शने वाला और मेहरबान है। इस आयत पे वो वाक्या बहुत फिट होता है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई बार सुनाते थे सहाबा कराम को, कि एक शख्स ने 99 कत्ल किए, 99 मर्डर्स, दिल में गिल्ट था, एक आबिद के पास चला गया। आबिद कौन है? नमाज रोज़ा है लेकिन इल्म नहीं है। जाके कहा कि हल ली मिन तौबा, क्या मेरी कोई तौबा की उम्मीद है? उसने कहा ये कैसे हो सकता है, कत्ल तो एक इतना बड़ा है, तुमने तो 99 किए। अब उसके दिल में गिल्ट था कि मैं नेक बनना चाहता हूँ, तुम मुझे कहाँ लेके चल रहे हो। उसने उसको भी कत्ल कर दिया, 100 पूरे हो गए, लेकिन दिल का बोझ कम नहीं हुआ। किसी इल्म वाले से अल्लाह ने मिला दिया, कहा सुनाओ भाई मेरी हिजरत है, क्या क्यों नहीं है? अल्लाह तो हर गुना को माफ़ करता है, शर्त है तौबा कर लो। कहा अच्छा ठीक है, क्या करूँ? कहा इस बस्ती को छोड़ दो, ज़ाहिर है तुम्हारी रेपुटेशन इतनी ख़राब हो गई है, 100 लोगों को कत्ल किया, ज़ाहिर है बंदा अच्छा बनना भी चाहे तो अच्छे बनने नहीं देते लोग। तो कहा कि तुम चले जाओ उस बस्ती में, चले जाओ वहाँ बड़े नेक लोग हैं और तुम उनके साथ जाके काम शुरू करो। इससे पता चलता है कि अच्छे लोगों का साथ बंदे में अच्छाई का शौक पैदा करता है। चल पड़ा, अभी रास्ते में था कि मौत के असरात शुरू हो गए। उस तकलीफ के हालत में जब जमीन पे गिरा तो अपने सीने के बल थोड़ा सा जैसे घिसटते हुए और आगे हो गया और दम दे दिए। जब वो मरा तो जन्नत और जहन्नम के फरिश्ते आ गए। वो कहते हैं ये हमारा बंदा है क्योंकि इसने 100 कत्ल किए हैं, ये कहते हैं नहीं हमारा बंदा है क्योंकि तौबा कर ली। अब थोड़ा सा मामला बढ़ा, अल्लाह सुब्हान तआला ने एक तीसरे फरिश्ते को फिर इंसान के रूप में भेजा कि जाओ इनका मामला चला के आओ। कहने लगा ऐसा करो कि तुम जमीन को नाप लो घर से लेके जहां पे मरा है, अगर ये फासला ज्यादा है यानी हिजरत कर चुका है ज्यादा और वो मस्ती करीब है तो जन्नत में चला जाए, और अगर ये जमीन अभी ज्यादा थी रास्ता कम था तो फिर तुम जहन्नम वाले ले जाओ। जब जमीन नापी जहां निजा की सख्ती आई थी ना वहां तक बराबर थी, सिर्फ एक बालिश्त जो वो मौत की सख्ती में आगे गया ना वो एक बालिश्त भर गई और जन्नत में चला गया। आखिरी दम तक कोशिश, मैंने एक दर सिर्फ पूरा इस अरबी को वर्ड टू वर्ड करके हदीस पे किया था तौबा पे, तो इसमें अमल के 20 नुक्ते निकले थे कि ये धोखा है कि मैं छोड़ना चाहती हूँ छोड़ नहीं रही, नहीं हो नहीं रहा, आखिरी कोशिश। और अल्लाह ताला रस्तों में भी आप अगर हैं तो आपकी कोशिश को कबूल करेगा, शर्त यह है कि हम सब इसके ऊपर अपने आप को तैयार कर लें और इस सारी चीज़ों को लेके चलें।